नहीं आ रहा होता। बाज़ औक़ात दिल चाहता है कि अपने दिल की बात किसी को कही जाए, बाज़ माएँ अपने दिल की बात अपनी औलाद को नहीं कह पाती, बाज़ बीवियाँ अपने दिल की बात अपने शोहरों को नहीं कह पाती हैं, और इसलिए फिर इंसान की पर्सनैलिटी आहिस्ता 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 इमोशनली वीक होती जाती है। उसमें कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजरी होती है, या कोई ऐसा इंसान जिंदगी में आया होता है जिसने आपको बुली किया होता है, चाहे वो आपका बचपन हो, चाहे वो आपकी जवानी हो, चाहे हो सकता है कोई आपका स्कूल का फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो अगर आप में से किसी को भी महसूस होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी अप एंड डाउन करता है, आप में से किसी को महसूस होता है आप इमोशनली वीक हैं, आप में से किसी को लगता है आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई इंसान आपके सामने रो रहा होता है लेकिन आपसे जुमला नहीं बोला जाता, आप उसे दुगना रोना शुरू कर देते हैं, अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं, मैं आपको हकीकत बता रही हूं, आपकी पर्सनैलिटी ऑल द वे बेहतरीन तरीके से पॉलिश हो सकती है अगर आप कुरान के सामने आकर बैठ जाएं। आपको जो इमोशनल स्ट्रेंथ कुरान देगा, आपको जो इमोशनल स्ट्रेंथ अल्लाह के नामों से मिलेगी, आपको जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ अल्लाह के कलाम से मिलेगी, ये आपको एक मजबूत पर्सनैलिटी बनाएगी। और अल्लाह ने औरत को बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ दी है, औरत मल्टीटास्किंग कर सकती है, मर्द नहीं कर सकते इतनी मल्टीटास्किंग। लिटरली औरतों के कामों को अगर आप देखें, चाहे आप वर्किंग वुमन है या आप हाउस वाइफ हैं या आप किसी भी ऐसे एज में आ गई हैं जिसमें आप बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं, माशाल्लाह कितनी मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपनी ताकत रमजान में महसूस होती है। पूरे 11 महीने आप कितने बुझे बुझे रहते हैं, मगर जो रमजान में आपको अपनी ताकत नजर आती है, दैट्स एक्चुअली यू, दैट्स रियल यू। ये जो अल्लाह आपको आपकी स्ट्रेंथ रमजान में दिखाता है, दैट्स रियल यू। और ये हमें स्ट्रेंथ कुरान की ताकत से मिल रही होती है, बिकॉज हम जितना रमजान में कुरान से जुड़ते हैं इतना 11 महीने नहीं जुड़ते, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कयाम में खड़े रहते हैं, क्लासेस में जाते हैं, कुछ हिफ्स करने की जो है वो मोटिवेशन में आ जाते हैं। आप जितना कुरान से जुड़ते जाते हैं, अल्लाह आपके पोटेंशियल्स आपको एक्सपोज करता जाता है। अला यालमु मन खलक, तो जिसने जो गाइडेंस हाथ में पकड़ाई है वो ऐसे ही नहीं पकड़ा दी, इट्स नॉट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज योर लाइफ। इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, अपना स्टेमिना फिजिकल चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए, इस कुरान के सामने आकर बैठ जाओ। जो इंसान इस सोच के साथ हर रात में सूरह मुल्क पढ़ेगा, कैसे हो सकता है सुबह उठकर उसको एक नई एनर्जी ना मिले, कैसे हो सकता है कि उसकी पूरी रात जो वो सोया वो इबादत ना बने। मोमिन कॉन्स्टेंटली अल्लाह को याद रखता है। अला यालमु मन खलक, जिंदगी में परेशानी आए पढ़ती रहिए ये आयत, जिंदगी में कोई इस तरह का क्रंच आए जिसमें आपको लगे कि इट्स अनबेरेबल, पढ़ती रहिए अल्लाह यालमु मन खलक, क्या अल्लाह नहीं जानेगा जिसने तख्लीक किया है। अल्लाह गफूर है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गाफिर है। हम सब यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई नहीं कह सकता आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं कोई गुनाह नहीं करती, आई एम सिनलेस, कोई भी नहीं है हम में ऐसा, बल्कि कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि आई एम सिनलेस, मैं गुनाह नहीं करती हूं। हम सब गुनाह करते हैं, हमेशा याद रखें अल्लाह गफूर है। अल्लाह किस तरह से गफूर है, अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ करते करते थकता नहीं। जब सूरह मुल्क पढ़ें, अपने दिन भर के गुनाहों को याद करें और अपने आप को याद कराएं अल्लाह गफूर है, अल्लाह से जितनी मरतबा माफी मांगी जाए अल्लाह माफ करता है। दिस इज द एसेंस इन गफूर, ही इज कॉन्स्टेंटली फॉरगिविंग, फऊल के वजन पर है। अल्लाह गफ्फार है, मेरा कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि अल्लाह उसको माफ ना कर सके, अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों से बहुत बड़ा है, मैं माफी मांगूंगी वो माफ करेगा। मैंने आज अपने अंदर इस्लाह का एक एम्बिशन बना लिया है, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह गाफिर है। जब मैं माफी मांगू तो इस ईमान से मांगू अल्लाह मेरी तौबा सच्ची है और मेरा यकीन है आपने मेरी स्लेट में इसको छुपा दिया, मेरे गुनाह को आपने छुपा दिया। ये तीनों मफहूम, गफूर, गफ्फार, गाफिर, गुनाह छुपा है, डिलीट नहीं हुआ। अरबी जुबान में मिगफर हेलमेट को कहते हैं। हेलमेट जब आप सर पर पहन लेते हैं तो क्या सर की शेप ऑब्वियस ही रहती है या छुप जाती है? सर की शेप तो नजर आती है ना सर पर पहना हुआ। मिसाल के तौर पर मैं अभी इस अपनी कॉपी को अपने दुपट्टे से कवर कर दो, दुपट्टा मेरा शिफोन का होगा, तो आपको ये तो पता चलेगा कि दुपट्टे के नीचे कुछ है, चाहे ये ना पता चले कि क्या है। लेकिन अगर मैं अपनी कॉपी को मेज के नीचे कर दूं, अब पता चलेगा आपको? अब पता नहीं चलेगा। सो ये मैंने अगर यहीं रखे रखे अपने किसी भी चीज को कपड़े से कवर किया, एंड देयर विल बी अ हीप, जैसे हेलमेट एक हीप बना देता है सर के गिर्द, इसको कहते हैं मेगफर। चाहे अल्लाह की शान गफ्फारी हो, चाहे अल्लाह का गाफिर होना हो, चाहे अल्लाह का गफूर होना हो, अल्लाह गुनाह को छुपा लेता है। क्या चीज गुनाह को डिलीट कर देती है? अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत गुनाह को डिलीट कर देती है। अल्लाह का गफूर होना गुनाह को छुपाता है। माफ कर दिया ना उसने, गुनाह है वहां पर, ढांप लिया उसने। तभी तो हदीस में आता है मफहूम कि तुम लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालो, आखिरत में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा। अल्लाह पर्दा डाल देगा अपना, अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदे के गुनाहों को कम्प्लीटली डिलीट कर देता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाहु अन्हु से आता है कि जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसको रहमत और मग़फ़िरत देता है। और अल्लाह क्या करता है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बहुत प्यारी मिसाल दी। वो कहते हैं कि किसी इंसान की दूसरे इंसान से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, फर्ज करें आपका किसी से झगड़ा हुआ और आपको लगा कि आपकी गलती थी, आपने जाकर माफी मांग ली, माफी भी मांग ली। अब जब आपने माफी मांग ली तो आपका दिल तो साफ हो गया ना, गलती आपने की थी, आपने माफी मांग ली। बट जिसके साथ आपने ज्यादती की थी, कभी कभी ऐसा होता है कि माफी मांगने के बावजूद उसके दिल में गुस्सा रहता है। दिस कैन हैपन विद अस आल्सो। किसी ने हमारे साथ ज्यादती की लेकिन फिर उन्होंने सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर भी दिल में हल्की सी खटक तो रहती है ना, एक क्रैक तो आ जाता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह की रहमत बंदे रोजे महशर में कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि जब किसी दो इंसानों के दरमियान में झगड़ा हुआ होगा और जिसने ज्यादती की होगी उसने माफी तो मांगी होगी, लेकिन जिस पर जुल्म हुआ था उसके दिल में हल्का सा एक जज्बा था गुस्से का, अल्लाह की रहमत यह होगी अल्लाह रोजे महशर उस शख्स के गुस्से को भुला देगा। अगर उसको याद रहे गुस्सा तो क्या होगा, गुस्सा याद रहेगा तो वो अल्लाह के सामने क्लेम करेगा। तो अल्लाह की रहमत क्या होगी कि अल्लाह उस शख्स के दिल में से उस गुस्से को भुला देगा और उसको बराबर का रिवॉर्ड देगा जितना रिवॉर्ड उसने आपको सॉरी बोलने पर दिया है। अला यालमु मन खलक, वो तो बहाने ढूंढता है माफ करने के, हम ही तौबा करने वाले ना बने तो इसमें हमारा कसूर है। हमेशा अल्लाह से मगफिरत और रहमत मांगे हमेशा। ये दुआओं के चंद दिन हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मगफिरत और अल्लाह की रहमत मांगे। अल्लाह इस महीने में हमें मगफिरत अता कर, हम इस रमजान से निकले ना जब तक कि आप हमें बख्श ना दें, और अल्लाह बाकी 11 महीने अपनी रहमत के साए में रख। आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की दुआ बचपन से पढ़ी है, उसमें ये दोनों एलिमेंट हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हम आपके मोहताज हैं मगफिरत के लिए भी, और जिंदगी भर आपके मोहताज हैं रहमत के लिए भी। तो अल्लाह के साथ अपने आप को अटैच करें। अल्लाह हमारी नेचर को जानता है, इसलिए अल्लाह ने कहा है बाहुवल लतीफुल खबीर। हम लतीफ का तर्जुमा उर्दू में करते हैं बारीक बीन, ये करते हैं ना उर्दू के तर्जुमों में, वो बारीक बीन है और बाखबर है। मैं आपको 5 मीनिंग्स बता रही हूँ लतीफ के, और जिसकी जिंदगी में ये 5 मीनिंग, जहां आप अपनी नमाज पढ़ते हैं या जो आपकी दुआओं की किताब है या जो चीज, जो भी किताब आपके हाथ में फ्रीक्वेंटली आती है, आप ये वो 5 मीनिंग का एसेंस अपने पास लिख कर रखें और बार बार अपने आप को याद कराएं कि अल्लाह आपके लिए लतीफ कैसे है। नंबर 1 एसेंस इसके अंदर जो आया है अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। लतीफ कहते हैं लाम तौफा, वो जो आपके सीक्रेट इश्यूज को, डेलिकेट इश्यूज को जानता है। अल्लाह हमारे डेलिकेट सीक्रेट इश्यूज को जानता है। देखें खबीर आया है ना साथ में, खबीर वो वाले मामलात होते हैं जो आपने एक्सचेंज किए दुनियावी तौर पर, अल्लाह मेरे दुनियावी आमाल जानता है। लतीफ जो मेरे दिल की गहराइयों में छुपा हुआ है, डेलिकेट मैटर्स। कभी कभी इंसान अपने रिश्तों से कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता है जिसको जुबान पर नहीं ला सकता है, ऐसा होता है ना। कभी माँ औलाद से करती है, कभी औलाद माँ बाप से करती है, कभी शौहर बीवी से करता है, कभी बीवी शौहर से करती है, कभी बहन भाई एक दूसरे से करता है। अल्लाह हमारे वो डेलिकेट मैटर्स को जानता है। अल्लाह को मेरी शख्सियत का इल्म है। देखें, अल्लाह ने तखलीक किया, अला यालमु मन खलक, तखलीक उसने किया, तो मेरी पर्सनैलिटी में, जो मेरी फितरत में अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, हम यहाँ जितने भी इंसान हैं, हमारी फितरत, फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास जमीआ, हमारी फितरत एक है, हम अल्लाह को पहचानते हैं, लेकिन हमारी सिफात और हमारी इंक्लिनेशंस अलग अलग हैं। आप में से कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देख सकता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, मुख्तलिफ चीजों हैं, मुख्तलिफ इंक्लिनेशंस हैं। अल्लाह हर पर्सनैलिटी की डिटेल्स को जानता है। तो लतीफ कैसे है, उसने मेरी जिंदगी का हर इंसिडेंट मेरी शख्सियत को सामने रखते हुए डिजाइन किया है विद वेरी डेलिकेसी। मेरी जिंदगी में कौन माँ बाप, कौन बहन भाई, कौन शौहर, कौन औलाद, कैसा ससुराल, कैसे हालात और वाकयात, ये एब्रप्ट नहीं है, ये एब्रप्ट नहीं है। जब इंसान अल्लाह को लतीफ इस तरह से समझता है, तो उसका बुरे से बुरा शौहर भी किसी ना किसी खैर का बायस उसको नजर आने लग जाता है। इसलिए कि कोई ऐसा इंसान अल्लाह ने दुनिया में नहीं बनाया जो कम्प्लीटली बुराई हो, बिल्कुल जैसे अल्लाह ने कोई इंसान नहीं बनाया जो कम्प्लीटली अच्छा ही हो। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और हमें सिखाया गया है, लोगों की अच्छाइयों पर नजर रखो और बुराइयों को ओवरलुक कर जाओ। माँ बाप की अच्छाइयों पर फोकस रखो, माँ बाप की कमजोरियों को ओवरलुक कर जाओ। अल्लाह ने हर शख्स, अल्लाह लतीफ कैसे है, दिस इज नंबर वन मीनिंग, अल्लाह मेरी शख्सियत को जानता है और अल्लाह ने मेरी शख्सियत को जानते हुए मेरे आसपास जिंदगी, इंसान, रिश्ते, हालात क्रिएट किए हैं। यह आपको ईमान देगा इंशाल्लाह। एक नाम अल्लाह का, लेकिन आपको ईमान देगा। अल्लाह आपको जिस रास्ते से चाहेगा, उस रास्ते से इंशाल्लाह खैर की तरफ लेकर आएगा। इसका मतलब है, माय लाइफ इज द ग्रैंड प्लानिंग ऑफ द ग्रैंड प्लानर। मेरी जिंदगी एब्रप्ट नहीं है, जैसे आज के बहुत से एग्नोस्टिक्स कहने लग गए, ये खुद ब खुद ही कायनात बन गई, खुद ब खुद ही टाइम चल रहा है, खुद ब खुद चीजें एज करती हैं, खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। नो, इट्स नॉट लाइक दिस, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सब चीजें एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हैं। तो एक मीनिंग, मेरी शख्सियत को जानकर मेरी जिंदगी के हालात डिजाइन किए गए हैं। दूसरे मीनिंग्स, अल्लाह ताला ने इन आयात में 12 से लेकर 14 तक मोमिन की दुनिया की जिंदगी डिफाइन की है। यक्षौना रब्बहुम आखिरत में नहीं आ रहा कि वो रोजे मैशर पे खड़े होकर अल्लाह का खशियत कर रहे हैं, ये उनका दुनिया का लाइफस्टाइल है। तो जब अल्लाह मोमिन को दुनिया के लाइफस्टाइल के हिसाब से बताना चाह रहा है, अल्लाह तुम्हारे हालात, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा रोना, तुम्हारे सीने की कैफियत, तुम्हारे इमोशंस को जानता है, जब वो तुम्हारे लिए अकॉर्डिंगली प्लान करता है, तो याद रखो अल्लाह लतीफ है, उसने इतनी ही बारीकी से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की जन्नत तैयार की है, तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत। जब ही हर इंसान की जन्नत इंडिविजुअल होगी, नो शेयरिंग। आजकल के बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, बिकॉज उनको अपने बहन भाई के साथ कोई कमरा शेयर नहीं करना होता। नो शेयरिंग इन जन्ना। अल्लाह ने तुम्हारी इंक्लिनेशन, अल्लाह जानता है ना किस इंसान में, मिसाल के तौर पर बास इंसानों के अंदर ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, अल्लाह जानता है ना। जिसने अल्लाह की खातिर कंट्रोल किया, जिसने अपनी नजर की हिफाजत की, जिसने अपने आप को हराम रिलेशनशिप से बचाया, जिसने दावत इनविटेशन मिलने के बावजूद अपने आप को किसी इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व नहीं किया, अल्लाह जानता है। अल्लाह तुम्हारी इंक्लिनेशंस के मुताबिक तुमको जन्नत अता करेगा। एक और इम्तिहान आज की दुनिया में पॉपअप हुआ है इन द यंग क्राउड, ये जो जेंडर रिकग्निशन इशू है। दुनिया सोशियोलॉजी इस बात को आज बहुत प्रमोट कर रही है कि जेंडर वेंडर कोई, बायोलॉजिकल जेंडर कोई चीज नहीं होती है, ये दुनिया डिक्टेट कर देती है कि आप औरत हैं या मर्द हैं। एंड दिस इज अ ह्यूज इशू। अल्लाह करे कि हमारे बच्चों को बहुत डिटेल इसकी ना मालूम हो, मगर जो बच्चे घरों से निकल रहे हैं, जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर निकलकर यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, जस्ट दिस इज अ इशू। यहाँ के बच्चों को भी बहुत मालूम है, डिपेंड करता है बच्चों का एक्सपोजर कितना है, बट ये दुनिया का इशू है इस वक्त। जेंडर रिकग्निशन इशू इस वक्त पूरी दुनिया को अपने कवर में लिए हुए है। इस वक्त इंसानों के अंदर से जेंडर डाइवर्सिटी खत्म की जा रही है। मर्द औरत कोई चीज नहीं होती है, मास्टर डिक्टेट कर देता है आपको सर्टन रूल्स बता के कि आप आदमी हैं या आप औरत हैं। जिस इंसान को ऐसी इंक्लिनेशन, बास लोगों की साइकोलॉजिकल इंक्लिनेशंस माहौल की वजह से, प्लस देर आर सर्टन डाइटरी फैक्टर्स, अब इस वक्त इसकी तफसील में नहीं जा सकती बिकॉज इस वक्त का टाइम नहीं है, देर आर लॉट्स ऑफ रीजंस अराउंड द वर्ल्ड जिसकी वजह से ये चीजें जो हैं ये साइकोलॉजिकल मेकअप के अंदर इंसानों के आ रही हैं। इंसान अपने जेंडर के लिए कंफ्यूज हो रहा है। बहुत से लोग हैं हमारे माशरे का हिस्सा हैं, देखने में आपको आदमी लगते हैं, वो कहते हैं इट सीम्स टू बी आई एम ट्रैप इन अ वुमेन्स बॉडी। जाइए जरा साइकोलॉजिस्ट के पास और आपको पता चलेगा कितने इश्यूज आ रहे हैं। माएं शादियां कर देती हैं पकड़ पकड़ के बेटों की, बट बेटा पोर्टेबल नहीं होता है कि वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को फिजिकल रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू कर सके बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजन। उसकी कंपनी क्या थी, उसने अपना इंक्लिनेशन क्या रखा, आपकी सोच, अभी मैं आपको कॉन्स्टेंटली सूरह मुल्क में बता रही हूं, आपकी सोच आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करती है। जब आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे मैं एक औरत का जिस्म जरूर हूं बट मेरे अंदर एक आदमी मौजूद है, तो आप क्या होगा, आप तो बाइपोलर हो जाएंगे। ये आजमाइश है आज के दौर में। अगर एक इंसान को ये फीलिंग्स होती हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द गे राइट्स एंड द लेस्बियन राइट्स, एक इंसान के अंदर मान लिया, इट्स अ ह्यूज डिबेट, मान लिया कि एक मर्द के अंदर इंक्लिनेशन औरत की नहीं है, उसको मर्द की तरफ अट्रैक्शन होती है, सही, आई एडमिट, उसका यही इम्तिहान है, उसको मर्द की तरफ नहीं जाना, उसको अपनी फिजिकल सेटिस्फैक्शन मर्द से पूरी नहीं करनी, औरत से नहीं कर सकता, स्टे अनमैरिड, रखे रोजे जैसे अल्लाह के रसूल ने कहे हैं, रखे अपने आप को केयरफुल साइड पर, ये उसका इम्तिहान है। ये उसके अंदर इस वक्त जो भी बायोटेक्निकल इशू आया है माहौल की वजह से, डाइट की वजह से, सोच की वजह से, उसकी आसपास की एक्टिविटीज और हैबिट्स की वजह से, ये उसका इम्तिहान है। तो हर इंसान का इम्तिहान अलग है। लेस्बियन लड़कियां बाहर के मुल्कों में नहीं है, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर लेस्बियन बच्चियां हैं। ये दो दो कपल्स, ये दो दो पेयर बना बना के जो मॉडलिंग हो रही है ना इतनी, देर आर वेरी सबलिमल मैसेजेस। हर चीज ऐसे नहीं हो जाती है, कभी कभी दिल चाहता है हर चीज के पोल खोल दो बस। देर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री वर्किंग बिहाइंड इट। लड़का लड़की नहीं नजर आ रहे बाप को, दो दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, और क्यों इतनी क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट में खड़ी हुई हैं? आपने कभी, आप लोग महसूस नहीं करते? जस्ट थिंक, स्टार्ट थिंकिंग, देखें तो स्कूल्स के अंदर हो क्या रहा है, देखें तो जाकर क्या माइंडसेट डिवेलप किया जा रहा है। अगर किसी औरत के अंदर, अगर किसी बच्ची के अंदर ये फीलिंग्स हैं कि उसको औरत की तरफ अट्रैक्शन होती है, उसका अब यही इम्तिहान है। अपनी इंक्लिनेशन को अल्लाह की इताअत के अंडर लेकर आए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। एक मर्द कहता है मुझे हर औरत अच्छी लगती है और अल्लाह ने उसके अंदर रखी है, तो आप उससे कहते हैं हाँ तो जो औरत अच्छी लगती है तुम कर लो अपना ख्वाहिश पूरी, ये कहता है दीन? अल्लाह ने कहा है हर औरत के लिए, हर मर्द के अंदर अट्रैक्शन है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है, लिमिट योर सेल्फ, निगाह नीची रखो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। तो अगर किसी गे और लेस्बियन के पास कोई जस्टिफिकेशन है और वो कहता है कि मुझे नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, दिस इज इन माय जीन्स, तो यही आपका इम्तिहान है। रोकें अपनी जीन्स को, थामें अपने आप को, और जो थामेगा अपनी इंक्लिनेशंस होने के बावजूद अल्लाह की इताअत में, अल्लाह ने उसी के मतलब की जन्नत डिजाइन की हुई है। सिर्फ इतना इम्तिहान है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ इतना लोगों को आज दीन के करीब लाने की जरूरत है। लोगों को इस वक्त हमदर्दी के साथ हाथ पकड़ के उनके फायदे की चीजें दिखाने की जरूरत है जो अल्लाह ताला ने यहां रखी है। तो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने अपने बंदों की बेहतरीन इंक्लिनेशन के मुताबिक जन्नत बनाई है। जस्ट होल्ड योर सेल्फ, अल्लाह लतीफ है, वो तुम्हारी इंक्लिनेशन जानता है। ये दूसरा मफहूम है। तीसरा मफहूम इसके अंदर स्कॉलर्स बताते हैं कि अल्लाह का लतीफ होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी सुन्नत है। अल्लाह मामलात को लतीफ होते हुए कैसे हैंडल करता है? डेलिकेटली। हर अल्लाह का बंदा अल्लाह की इस सुन्नत के किसी ना किसी एसेंस को अपने अंदर लेकर आए। प्लीज मामलात को डेलिकेटली हैंडल करना शुरू करें। यह हर चीज को डंडे के साथ हैंडल नहीं किया जाता, चाहे औलाद हो, चाहे शोहर बीवी का रिलेशनशिप हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मैं कहो, अल्लाह की क्वालिटी है अल्लतीफ। अल्लाह अपने बंदों को बताना चाहता है इस लुत्फ और करम को अपने अंदर लेकर आओ। हैंडल योर मैटर्स विद डेलिकेसी, पहले सोचो फिर बोलो, मामले की गहराई तक जाओ। और आपके और मेरे अंदर लुत्फ करम नहीं आ सकता अगर हम इल्म नहीं रखेंगे। अल्लाह के लुत्फ के साथ दूसरी सिफत कौन सी है? खबीर की है। ही हैज फुल व्यू ऑफ समथिंग जब भी वो लुत्फ और करम करने वाला है। तो अगर मोमिन को अपने अंदर ये लुत्फ की मेच्योरिटी लानी है, अल्लाह की सुन्नत अडॉप्ट करनी है, मामलात को डेलिकेटली हैंडल करना है, कुरान के इल्म के बगैर, कुरान से जुड़े बगैर ये मामलात की डेलिकेसी की हिकमत उसके अंदर आ नहीं सकती। यह है इसके तीसरे मीनिंग्स। चौथे मीनिंग्स इसके बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह हमारे लिए हर दिन अल लतीफ होता है। इसमें आप यूं कह सकते हैं, अल्लाह हमारे लिए हर दिन सटल होता है। अल्लाह सटल अंदाज में हर दिन हमारी मदद करता है। कभी अल्लाह की मदद अपेरेंट होती है, जाहिर हो जाती है, और कभी अल्लाह की मदद जाहिर नहीं होती। लेकिन याद रखें, अल्लाह हर दिन हमारे लिए अल्लतीफ है। हर दिन जो जितना अल्लाह के सामने ह्यूमिलिटी के साथ रहेगा, उसको अल्लाह का लुत्फ महसूस होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जानते हैं? 130 साल नरेशंस में आता है, 130 years वो अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे। फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम 130 साल के बाद आए, और जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना नुबश्शिरु का बिल गुलाम इन इस्मुहु याहिया, हम तुमको खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तुमको बेटा देगा, और नाम भी बता दिया, उसका नाम याहिया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्ना यकूनु ली, बेटा कैसे होगा, तो मांग क्यों रहे थे। फिर इंसान अल्लाह से मांगता है, और जब इंसान कभी कभी बिल्कुल इस स्टेज पर आ जाता है कि शायद उसको लगता है कि पता नहीं अल्लाह सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसी वक्त दुआ कबूल होती है। याद रखिए, अल्लाह की कबूलियत के अपने टाइमिंग्स हैं। आपने और मैंने मांगते रहना है, अल्लाह के सामने एटीट्यूड से नहीं मांगते, रब्बना देना फिर दुनिया हसना, अल्लाह मुझे दुनिया आखिरत का हसना दे दे, नहीं। मांगे भिखारी की तरह, मांगे उस बच्चे की तरह जिस बच्चे को आपकी इजाजत चाहिए कि मुझे ईद के सेकेंड डे अपनी फ्रेंड्स के घर जाने दें। वो कैसे मांगता है? मांगे भिखारी की तरह। हाँ, बच्चों से बड़ा भिखारी कोई नहीं लगता उस टाइम पे। दिल चाहता है उनकी सारी हरकतों की वीडियोस बना लो, और जब वो वहां से होके आ जाएं और अम्मा को लिफ्ट ना कराएं, तब उनको बार बार दिखाओ, ये थी तुम, अब क्या हो गया, अब अम्मा फिर दोबारा याद आएंगी जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन बिल्ट होगी। अल्लाह से मांगे और भिखारी की तरह मांगे। अल्लाह सुनेगा, इस ईमान के साथ मांगे, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह की कबूलियत के अपने चांसेस हैं, उसकी अपनी स्कीम्स हैं, उसके अपने मामलात हैं। अल्लाह की काइंडनेस, अल्लाह का करम, अल्लाह का लुत्फ बंदों तक आता है, बाज़ स्कॉलर्स कहते हैं उस वक्त आता है जब बंदा जो है वो ऑलमोस्ट अपने आप को बस अल्लाह के तवक्कुल पर दुआ कर रहा होता है, जुबान से बस छोड़ चुका होता है मामले को, फिर अल्लाह की मदद आती है। बाज़ औक़ात अल्लाह की मदद आती है इन द मिडल ऑफ द डार्केस्ट टाइम्स, जब इंसान अपनी शदीद तरीन थ्रेशहोल्ड पर आ रहा होता है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़कर नहीं आजमाता। हर रात, रात सबसे गहरी डॉन से पहले होती है, और वो जो सुबह की सुबह सादिक होती है और पहली किरण आती है, द सिल्वर लाइनिंग, हर इंसान की जिंदगी में दुआओं की कबूलियत होती है। तो याद रखें, अल्लाह लतीफ है, दिस इज द फोर्थ मीनिंग। अल्लाह अपने बंदे के साथ दुआओं की कबूलियत का मामला करता है, उसकी प्लानिंग अपनी होती है, उसके टाइमिंग्स अपने होते हैं। हमारा काम क्या है? ज़करिया अलैहिस्सलाम 130 साल दुआएं मांगते रहे, आप और मैं 3 दिन दुआ मांगते हैं और फिर कहते हैं सुनता ही नहीं अल्लाह। अब मैं बस, अल्लाह को पता है बार बार मांगने की क्या जरूरत है, वो तो दिलों का हाल भी जानता है, क्या जाने वहां पर बैठकर मांगती रहूं, नहीं मांगे और बार बार मांगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है कि तुम जैसा अल्लाह के बारे में गुमान करते हो अल्लाह को तुम वैसे ही पाते हो। पांचवीं क्वालिटी जो अल्लतीफ की आती है, स्कॉलर्स लिखते हैं अल्लाह लतीफ है, अल्लाह तुम्हारे मामलात में जो तुम मांग रहे हो उसके बाद जो तुम्हें चीज मिलेगी उसके बिहाइंड द सीन इंसिडेंट्स को भी जानता है। तो कभी वो तुम्हें देता है, कभी वो तुमसे रोक लेता है। ये उसका लुत्फ होता है कि वो तुम्हें हर वो चीज हाथ में नहीं थमा देता जो तुम मांगते हो, आउट ऑफ रहमा, आउट ऑफ मोहब्बत, इसलिए कि वो चाहता है कि हर तरह से तुम्हारे साथ खैर का मामला हो। तो जब आपको जिंदगी में लो फीलिंग्स आए, जब आपको लगे आप इमोशनली लो हो रही हैं, अल्लाह की इस लतीफ की सिफात को खोलें और पढ़ें, और इस उम्मीद के साथ अल्लाह से हमेशा मांगें कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता है। अल्लाह ताला हमारे लिए इस कुरान के फहम को कंटेन करना और इस पर अमल करना आसान बना दे। अल्लाह क़यामत के दिन इस इल्म को हमारी नेकियों के स्केल में सबसे हैवीएस्ट बनाए। अल्लाह हमें इस इल्म को आगे पहुंचाने वाला अपने अमल और इखलाक के जरिए बना दे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह रमज़ान के चंद दिन हैं, अल्लाह हमें बेहतरीन तरीके से इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज 27वीं ताकरात है, 2 ताकरातें रह गई हैं, अल्लाह हमें बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में अमन और सुकून और खुशियां अता फरमा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की ताकत अता फरमा। अल्लाह हमें चलते फिरते इस दुनिया में रखिए, कभी किसी का मोहताज ना कीजिएगा। अल्लाह हमारी औलादों को इस दीन की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हमारे ज़िंदगी में जो कुरान की खिड़की खुली है इल्म की, अल्लाह इस खिड़की को हमेशा खुला रखिए। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह हमारी सेहत और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाइए। अल्लाह हमारे रिस्क को हलाल और बरकत वाला बनाइए। अल्लाह हमें और हमारी औलाद और हमारी ज़ुर्रियत को हमेशा रिस्क हलाल का निवाला खिलाइए। अल्लाह हमारी जो खताएं और गलतियां हैं अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी गर्दनों को कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज रखिए। अल्लाह हमें और हमारी औलादों को जहन्नम के अजाब से महफूज रखिए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। कल इंशाल्लाह क्लास में 3 बजे शुरू कर दूंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।